मेरी अम्मी परसों पहुंच जाएंगी, हमने अब तक कुछ भी नहीं किया है।
तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों की बेटियों के लिए ड्रग्स खरीदते हो।
अम्मी पैसे की बात ही नहीं, हम एक दूसरे को चाहते हैं।
ऐसी मोहब्बत के जो गली कुचों में पैदा होती है वही दफन भी हो जाती है।
बाबा को फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हमको अरेस्ट कर लिया गया है अंकल, हम थाने में हैं, जल्दी आ जाइए आप।
उसकी जेब से ड्रग्स मिले हैं।
ड्रग्स?
इसी फोटो वाले लड़के की जेब से ड्रग्स मिले हैं। अलबत्ता उस वक्त आपकी लड़की भी साथ में थी।
एक लेबोरेटरी चाहिए मुझे।
इतनी रात को?
सर, आपकी बेटी गाड़ी में है, आप जाएंगे नहीं?
आज रात को भूल जाओ। अपने बास के सामने अगर कुछ कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। कहो अच्छा?
बताना कितना निकालूं।
बस करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पप्पी जान।
देख लेंगे,
बैठिए मैं जाता हूं। कौन?
कौन था?
वही मोहम्मद जवाद।
उनके बाप हो तुम? मोहम्मद जवाद साहब।
मोहम्मद जवाद साहब जी। अच्छा पप्पी,
क्या है?
मोहम्मद जवाद साहब से कह दिए मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, उसी बारे में।
किस बारे में?
वो खुद जानते हैं।
नहीं नहीं, बैठिए जवाद साहब। अर्दलान और रहा वापस नहीं आए? रहा मिल गई क्या? तो क्या हुआ है?
सलाम अलैकुम डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया आपका। जी जी मैं ही हूँ जी, आपके मरीज आ चुके हैं। मेरे दोस्त तमजीद साहब और उनकी बेटी अभी नहीं पहुँचे, नहीं मालूम कब पहुँचेंगे। अच्छा आप वहाँ कह दीजिए, उनका इंतज़ार कर लें, सब्र और हौसले के साथ वो पहुँच जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
कौन चल चुका है, क्या हुआ है, कुछ बताओगे?
नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैंने कहा नीचे उतरो।
मुझे नहीं आना।
अर्दलान क्या हुआ है? खुदा की
नीचे उतरो,
छोड़ो
अर्दलान, छोड़ो इस बच्ची को, छोड़ो
मत करो,
मैं सुधार दूंगा इसे।
क्या हुआ है अर्दलान?
छोड़ो इसे
बाबा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए,
छोड़ दो
बाबा प्लीज।
ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। परेशान है बेटा? कुछ नहीं है बेटा, जिंदगी इसी का नाम है। कुछ बोगे तभी तो फसल हासिल होगी, अपने बच्चे को टाइम दो तभी कुछ होगा। गलत इब्तिदा का अंजाम भी गलत होता है। परेशान ना हो बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम परेशान ना हो।
सिर्फ ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है?
बाबा।
मैं कैसा जानवर हूं, कैसे जानवर मेरे हिस्से में आए? मौत नेमत है, लेकिन इसके लिए जो क्या चाहिए?
खुदा के वास्ते छोड़,
बाहर जाओ। ये उस बदबख्त औरत का नतीजा है, उसकी जहालत उसकी अम्मी का कारनामा है। बाहर जाओ, बाहर निकलो, सब मेरे सामने सेटो।
सर खुदा के वास्ते,
क्या चाहिए तुम्हें?
कुछ नहीं सर, ये बैग
मुझे दो, बाहर जाओ, मेरे सामने सेट हो, दूर हो जाओ, जाओ। नहीं, अब आज के बाद इस घर का कोई दरवाजा बंद नहीं होगा, सारे दरवाजे खुले रहेंगे। पानी पीने पर भी ध्यान दूंगा, सांस भी लो तो मेरी इजाजत से। सुधार दूंगा तुम्हें, उस औरत से भी गया गुजरा हूं, अगर तुम्हें सुधार ना सकूं। ड्रग्स, ड्रग्स, नशा, अजनबी लड़के की फोटो। थोड़ा तवज्जो से रहा करो अर्दलान तमजीद, ध्यान दिया करो अर्दलान। जिंदगी भर बर्बाद बच्चों को गली कूचों में देखा, बस अफसोस करता रहा। अब मेरी बेटी उनसे चार हाथ आगे है, मैं छुड़वा दूंगा। अब इसके बाद जहां कैद खाना है, हारून रशीद का कैद खाना, या तो ड्रग्स छुड़वा दूंगा या तो इसी घर के बागीचे में तुम्हें दफना दूंगा, कुत्तों की तरह पेश आऊंगा।
क्लिनिक से आए हैं राह को अपने साथ ले जाने के लिए।
किसने तुमसे क्लिनिक का कहा?
अकल, अकल कहती है कि इल्मी तरीके से इसे छुड़वाया जा सकता है। उठो बेटी।
मैं अपनी बेटी किसी क्लिनिक में नहीं रखवाऊंगा, ताकि सब कहें ये देखो अर्दलान तमजीद की बेटी है जो नशई हो गई, नहीं चाहिए वापस भेज दो।
सब नहीं कहेंगे, सिर्फ क्लिनिक को पता होगा।
कोई जरूरत नहीं है बाहर, तुमसे क्या
तुम
मतलब?
तुम बुलडोजर की तरह हो गए हो, जो कुछ सामने आए बर्बाद करके आगे बढ़ते हो।
तुम क्या चाहती हो, ये कोई होटल है जो घर में घुसाई हो? जाओ जाओ बाहर जाओ जाओ।
तुम क्यों सबसे लड़ रहे हो,
उसे क्लिनिक ले जाने दो, सब ठीक
मुझे
हो जाएगा।
किसी की मदद की जरूरत नहीं।
तुम इधर आओ, उसको क्लिनिक ले जाने दो इलाज के लिए। तुम उसे क्यों रोकना चाहते हो बेवकूफ आदमी?
मत रो बेटा, मेरी जान मत रो।
जाओ बाद में आना अरसलान। मैंने कहा जाओ बाद में आना।
गुलबानु ने मुझसे कहा कि अभी आऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अब आप ठीक हो जाएंगे।
खा लीजिए ताकि कल रोजे में ज्यादा परेशानी ना हो आपको।
बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आपको याद रह गया?
जी मोहम्मद जवाद साहब, मेरे मरहूम शौहर भी आपकी तरह मुस्तहबी रोजा रखते थे। रोजा मतलब सख्त गर्मी में रोजा, भड़कती आग के सामने रोजा।
जी जी, रोटी बनाते थे। तंदूर के सामने खड़े होकर रोजा रखना हर किसी के बस की बात।
खुदा आपकी मगफरत फरमाए मिर्जा साहब। हाय कैसे बैठा है परेशानी के आलम में। ऐसे उसकी शान और शौकत पर मत जाओ, उसकी तन्हाई दूर करो मोहम्मद जवाद।
न जाने का दिल है न रुकने का। ये खाऊंगा तो प्यास लगेगी गुलबानो। शुक्रिया तुम्हारा। जब राना थी तो कहते थे एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, اور یہاں آ گئے، 6 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے ہیں طلاق ہوئے، ابھی تک یہیں ہو تم، لیکن انشاءاللہ جب راہ ٹھیک ہو کر آ جائے گی تو سائڈ والی بلڈنگ میں چلے جانا، بچوں کے ساتھ رہنا۔ یہ کیسی زندگی بنا رکھی تم نے، یہ کیا حالت بنا رکھی تم نے، نہ کوئی انرجی نہ کوئی پیار۔ راہ کتنے سال کی ہے؟ 19 سال کی۔ میں باہر آنگن میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہم 19 سال کے تھے تو کیا کرتے تھے۔ مجھے تو 3 سال ہو چکے تھے آزر سے شادی کیے ہوئے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں اردلان، اور تم نے مریم سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔
رہا بس 18 سال کی ہے، 19 سال اس لیے کہہ رہے ہو تاکہ 19 سال پرانی بات یاد دلاؤ۔ میں تمہارا کتنا مقروض ہوں۔
میرے اور اپنی امی کے علاوہ ایک اور شخص سے اس کے بھی مقروض ہو، مریم کی بات کر رہا ہوں۔
معلوم ہے، اس لیے تم نے 19 سال پرانی بات یاد دلائی ہے۔ تم جانتے ہو محمد جواد، میں جلد ہی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم مجھے پریشان کرنے لگے ہو، تم مجھے بے وقت آنا دینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو
رہا ٹھیک ہو کہ نہیں۔
اس کو ہونا ہی پڑے گا، میں ایسی لڑکی کو زمین میں گاڑ دوں گا۔
انسان اگر سدھرا ہوا ہو تو بچی کو سدھارتا ہے، دف نہیں کرتا۔ انسان اگر انسان ہو تو صبر و تحمل سے کام لے گا، بچے کی مدد کرے گا۔ انسان کا بچہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ بات کرتا ہے، جیتا ہے مرتا ہے، سکون سے زندگی گزارتا ہے، لیکن اپنی مذمت کرتا ہے کہ آخر میں نے کیا کیا جو میرا بچہ ایسا۔
ارے بھائی، بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، کہو اچھا۔ میں صبح سے شام تک کاروبار میں پھنسا رہا، اگر وہ عورت نہ گئی ہوتی تو رہا بھی میرے ہاتھ سے نہ جاتی۔
میرے بھائی، تم خود جب کبھی ارسلان کو پیار کرنا چاہتے ہو تو وہ تم سے دور بھاگ جاتا ہے، رہا دور بھاگ جاتی ہے، چونکہ تمہیں پہچانتے ہیں کہ غصے والے ہو۔
میں نے ان سب کا کیا بگاڑا ہے بھائی جو وہ مجھ سے بھاگنے لگے ہیں، چونکہ اس عورت نے ان کو بگاڑا ہے جو ان کی ماں ہے۔
اچھا، تو یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہے ہو کہ سب چیزوں کا قصور اپنی بیوی پر ڈال دو۔
تم قصوروار کی تلاش میں ہو؟
نہیں، اپنے آپ کو ثابت کرو۔
کس کے لیے اپنے کو ثابت کروں؟
اپنے آپ کے لیے۔ اپنے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اب کہ جب یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا کر سکتے ہو؟ تم اس وقت میرے دوست تھے کہ جب ہمارا بچپن تھا، غربت تھی، یتیمی تھی، لیکن ابھی میں تمہارا دوست ہوں کہ جب تم اپنے آپ سے بھی دور ہو، بچوں سے دور ہو تم۔ مجھ دوست سے ایک رائے حل سن لو۔ تمہاری بیٹی کے کمرے میں ایک لڑکے کی فوٹو ملی ہے، تو سوچو کیوں ایسا ہوا کہ وہ گلی کوچوں میں ایک لڑکے کے پیچھے بھاگی۔ اگر تمہاری بیٹی ڈرگز لیتی ہے تو سوچو کیا کمی رہ گئی کہ وہ ڈرگز کی طرف گئی۔ میری بات غور سے سنو، اگر اپنے بچے کی زبان سمجھ سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری بیٹی زندگی بھر اسی طرح رہے گی اور تم ایک نشے والی لڑکی کے بھاگ۔ سنو جناب، بڑے کارخانے کے مالک، اپنی بیٹی کی زبان کو سمجھو۔ اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرو۔ اگر اس کی زبان سمجھ سکو تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اردنان، مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ رہا 18 سال کی ہے۔
محمد جواد صاحب، یہ میری پپی نے دیا ہے، کہہ رہی تھی اذان ہونے سے پہلے کھا لیجیے تاکہ کل پریشانی نہ ہو۔
خدا انہیں سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ۔
سر، میری ٹریننگ بھی اب ختم ہو گئی ہے۔
اچھا مبارک ہو ماشاءاللہ.
لیکن مہربانی کر کے وہ مسئلہ بھی میرا حل کرا دیجیے.
کون سا مسئلہ؟
وہی کام شادی اور...
اچھا اچھا پہلے کام ڈھونڈنے دو بعد میں شادی کے بارے میں سوچیں گے.
کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کا ایک ساتھ انتظام ہو جائے؟
انتظام ہو جائے؟
ارے یہی ایک ساتھ ہو جائے.
جی نہیں ترتیب سے پہلے کام پھر شادی. اور یہ اب آزر میڈم کی ہارن کی آواز ہے مجھے جانا چاہیے. خدا حافظ.
ٹھیک ہے میں ہر روز آپ کو یاد دلاتا رہوں گا بس نام نہیں لوں گا وہی مسئلہ بولوں گا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم آزر.
پہلے اس تھرموس سے جو وہاں پیٹ کے نیچے رکھا ہے ایک کپ چائے نکالیں اور گھر سے جو میں ایک لکما کیٹلیٹ لے کے آئی ہوں وہ بھی کھا لیں پھر بعد میں بات کریں گے.
اوہ ابھی تو سحری کو کافی ٹائم ہے اس وقت تو پھر سے بھوک لگ جائے گی.
پیٹو سحری کے لیے الگ کر رکھا ہے میں نے. اچھا
بہت بہت شکریہ.
نوشی جان نرسنگ ہوم سے فون آیا تھا کہہ رہے تھے خورشید نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا ہے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے ایک کونے میں پڑی بیٹھی ہے تمہیں یاد کر رہی ہے.
مجھے؟ لیکن مجھے کیوں؟
وہی پرانے سوالات کہ میری امی کون ہے ابو کون ہے کہاں رہ رہے ہیں.
تارے کا ایک ٹکڑا ایک دن آسمان سے چھوٹ کر بہت دور مطلب چاند کے پاس چل کر پہنچ جاتا ہے. بہت سے آسمانوں سے گزرتا ہے مطلب پہلے آسمان سے دوسرے تیسرے اور چوتھے آسمان سے کہ اچانک آہستہ آہستہ وہ بھول جاتا ہے کہ کئی آسمانوں پار کر چکا ہے. وہ چاند کے پاس پہنچا زمین کا ایک راؤنڈ لگاتا ہے پھر چاند کے پاس پہنچتا ہے. چاند سے کہا شہر کو دیکھو. کہا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں. پھر وہ تارا گیا جاتا گیا چلتا گیا اور وہ بھول گیا کتنی دور چلا گیا ہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا کتنے سال ہو گئے. پھر سورج کے پاس پہنچ جاتا ہے. تارے کو جب پتہ چلا کہ سورج کیوں تنہائی کا احساس کر رہا ہے تو سمجھ گیا کہ ارے اسے پلٹ کر واپس جانا چاہیے جہاں سے آیا ہے. تارے نے سورج سے کہا دیکھو کیسے زمین تمہارے ارد گرد گھومتی ہے تم سے دور ہوتی ہے تم سے قریب ہوتی ہے. چاند کو دیکھو کہ کیسے یہ کام کرتا ہے. وہ سب تم سے دور ہو چکے ہیں اور پھر قریب ہو جاتے ہیں جیسے کہ تم سے انہیں پیار ہو جیسے کہ وہ تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں. اس کے بعد سورج کو تنہائی کا احساس نہیں ہوا. مطلب یہ کہ تارا پلٹ کر چلا گیا اور ہم یہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ماں باپ کی جگہ کو کیسے بھرنا چاہیے ان کی جگہ کون لے گا ان کی جگہ پر کون آئے گا. وہ خدا جس نے تارے پیدا کیے جس نے ہم کو پیدا کیا وہ سب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کہاں سے آیا اور کس کو کہاں جانا ہے. ستارہ سورج سے کہتا ہے ذرا دیکھو زمین کیسے گھوم رہی ہے اور تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہے. ماں باپ کیسے یہ کام کرتے ہیں. ماں باپ دور ہوتے ہیں لیکن پھر قریب آ جاتے ہیں جیسے چاند ستارے اور جیسے زمین کا قصہ ہے. وہی سارا قصہ ہمارا ہے ہم سب لوگوں کا ہے. مطلب یہ کہ ستارے کو اب یہ پتہ چل گیا کہ اس کا سفر کیا ہے اسے کہاں جانا ہے. ہماری بھی یہی مثال ہے. بچے بھی ستاروں کی طرح ہیں ماں باپ بھی چاند اور سورج کی طرح ہیں. خدا کرے حاجی ثانی اتنے شور شرابے سے بیدار نہ ہو گئے ہو.
इंशाल्लाह मेरी मदद करेंगे।
हाँ सर।
शुक्रिया। इस घर की बहुत याद आएगी मोहम्मद जवाद।
खुदा का शुक्र है बाबरकत घर था ये।
हाँ लेकिन जब सोचती हूँ कि 200-300 बच्चों का हॉस्टल बनने वाला है तो मुझे बहुत खुशी होती है।
चलो अल्हम्दुलिल्लाह।
अचानक मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कितने अच्छे दिन थे।
वाकई अजीब बात।
क्या अजीब है?
ये कि पढ़ाई में कमजोर लोगों को भी कॉलेज का जमाना याद है।
मैं पूरे कॉलेजेस में 10th नंबर पे आई थी, कमजोर थी।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम।
मुझे पहचाना?
जी राना साहिबा, राहा की वालिदा, अर्दलान साहब की साबका बीवी
और अरसलान की अम्मी।
आइए।
मेरे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि अर्दलान ने मेरे बारे में आपसे क्या कहा है, लेकिन मेरे अलग होने की वजह मुझ पर बाहर का भू सवार होना नहीं था, बल्कि मेरे लिए मुश्किल बात यह थी कि 18 साल के बाद समझो कि जिस मर्द के साथ मैं रहती हूँ वो तुम्हारे हुस्न जमाल का शायदा नहीं है, बल्कि उसे तुम्हारे बाप के पैसों से प्यार है। यह सब उस शख्स के लिए है कि जिसके जूतों की आवाज़ घर में दाखिल होते ही मैं सुन लेती थी और फौरन शीशे के सामने जाकर अपने को संवारती थी ताकि अच्छी लगूं, मेरा शौहर मुझे चाहे। इस उम्मीद के साथ कि शायद वो तुम्हारी बिगड़ी हुई जिंदगी संवार सके। लेकिन मैं गई और नई जिंदगी का आगाज किया, लेकिन खुश नहीं हूं। वतन से दूर खुशी कैसी, वहां तमाम रंगो बू के साथ गरीब हूं, गरीब उल वतन, खासतौर से जब अपने बच्चों से दूर हूं। अर्दलान से तलाक के बाद खरीदा है ताकि हमेशा मुझे याद रहे कि एक शादीशुदा खातून की तरह कभी अपने बच्चों को ना भूलूं। सिर्फ बच्चे, न किसी से प्यार किया, न किसी से दिल लगाया, न शादी, सिर्फ बच्चे। आपको पता है रेहा ने मुझसे क्या कहा है? वो कहती है अगर मैं नहीं आई तो वो स्मगलरों के पास चली जाएगी। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि जो इंसान स्मगलरों के चक्कर में फंस जाते हैं तो उनका हशर क्या होता है। आप नहीं जानते, अर्दलान भी नहीं जानते, नहीं जानते कि मेरी राह स्मगलरों के सामने हाथ फैलाना चाहती है। इस बार अर्दलान ऐसी जगह खड़े हैं जहां मेरे पापा काफी साल पहले खड़े थे। वो अपनी तमाम जिंदगी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए और रोज यही सोचते हो कि आज इंटरपोल वाले उन्हें पकड़ लेंगे कल।
क्यों, अर्दलान क्या कर रहा है?
अर्दलान के काम से मुझे कुछ नहीं, मुझे अपने बच्चों की परवाह है।
लेकिन मुझे काम है।
अगर काम है तो जाकर पूछ लीजिए। मैं सीधी एयरपोर्ट से यहाँ आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके अर्दलान से अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने अभी तक रेहा को फोन नहीं किया है। सीधी यहाँ आई हूँ ताकि मेरी और मेरे बच्चों की मदद करें। आप मोहम्मद जवाद साहब हमेशा मुझसे नफरत करते थे, लेकिन इतने शरीफ इंसान थे कि कभी जाहिर नहीं होने दिया। मेरी तरह मैंने कभी जाहिर नहीं किया। आप मेरी जिंदगी के तरीके से खुश नहीं थे, मुझे भी आपकी जिंदगी का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मंतखे इंसान है, कम से कम अर्दलान से ज्यादा। तो फिर आप उससे बात कीजिए और कहिए कि मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दे।
रहा इस लड़के से मिलती है
तो मैं क्या करूं?
इस लड़के की जेब से ड्रग्स मिले हैं।
हर किसी को अपने किए की सजा मिलती है।
जब रहा को हम घर ला रहे थे तो उस लड़के को जेल में डाला गया है।
अच्छा हुआ।
अर्दलान को शक हो गया था कि रहा भी ड्रग्स इस्तेमाल करती है या नहीं।
उसको तो दुनिया की हर चीज पे शक है,
इसीलिए उसने डांट के चिल्ला के रहा को क्लिनिक पहुंचाया कि उसका भी टेस्ट हो सके, पता चला कि वो ड्रग्स लेती है। डॉक्टर, वही डॉक्टर जिनके यहाँ इस वक्त रहा है, उसने बताया कि जिस मरहले में रहा है वो मरहला ऐसा है कि बहुत सख्त है। ये मरहला ऐसा है, इतना सख्त है कि इसमें ड्रग्स लेने वाले को ऐसा लगता है कि उसके जोड़ जोड़ अलग होते जा रहे हैं, आज़ा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अब इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं आप, बताइए।
मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। फरजाद, फरजाद, फरजाद।
आओ चलो।
अम्मी मुझे माफ कर दे।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। चलो मरने से पहले थाने का रास्ता भी देख लिया। अपनी अम्मी को कहां कहां तक ले जाओगे? शाबाश है तुम्हारी गैरत पर। सुबह के 4 बजे हैं और तुम्हारी माँ थाने और सड़कों पर है। शाबाश है तुम्हारे ऊपर। उस लड़की के घर का एड्रेस मुझे दो, मैंने कहा उस लड़की के घर का एड्रेस मुझे दो।
अम्मी उससे मिले।
अरे सामने से हटे, मुझे जाना है।
अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो नहीं हटूंगी।
क्या कह रही हैं आप? सामने से हटिए, मुझे काम है।
इतने से ड्रग्स की वजह से जो उसके पास था उसे 10 दिन के लिए जेल भेजा है और 5 लाख तुमान जुर्माना भी किया है।
कैसा ड्रग्स?
मैं जानती हूँ कि 5 लाख तुमान आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए
गलत एड्रेस पर
आई है। लेकिन जमा करके उसे निकाल उसकी हिफाजत करूंगी, ठीक कर दूंगी उसे। अब ज्यादा ध्यान दूंगी उस पर, और आप भी अपनी बेटी का ज्यादा ख्याल रखेगा कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे।
अच्छा, उस जलील और लावारिस बच्चे की अम्मी आप है?
लावारिस होना बुरी बात नहीं है, बदतमीजी बुरी बात है।
देखिए मोहतरमा, मेरी बेटी एक क्लिनिक के कोने में पड़ी है।
मेरा बेटा जेल के कोने में।
जाइए मोहतरमा, जाइए।
अगर मेरे बच्चे में खराबी है तो आपकी बेटी में भी है।
तुम्हारा
ये
बेटा तो
रेहा के कॉलेज से फोन है, प्रिंसिपल का फोन है। सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप?
मेरी बात गौर से सुनो, क्या कह रहा हूँ। कल वैसे कहकर आया था मैं वहाँ आकर कॉलेज में ताला लगवा दूंगा, और इस वक्त तुमसे कह रहा हूँ प्रिंसिपल, मैं वहीं आ रहा हूँ कॉलेज बंद करवाने के लिए। मेरी बच्ची एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आई, सड़क पर दरबदर फिरती रही। क्यों कॉलेज नहीं आने दिया? क्यों मुझे नहीं बताया? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे फोन पर कुछ नहीं सुनना है। मैं वहीं आ रहा हूँ, अपना जवाब तैयार रखो। कहो। अच्छा, ये लो गुलबानो, और अब आप, मैं आपके बेटे के बाहर आने का इंतजार करूंगा, फिर उसे मैं देख लूंगा। देख लेने का मतलब तो जानती हैं आप।
मेरे बच्चे को उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। इस मुल्क में कानून भी है।
कानून? कानून मैं हूँ, चूंकि मेरी जेब में पैसे हैं। आप जाइए।
देख लेंगे।
मैडम,
मरियम, मरियम कौन है?
वो काम जो अर्दलान ने किया है,
उससे मेरे बाबा की कमर टूट गई है।
अभी आप आ रहे हैं, 2 घंटे पहले इसकी अम्मी आई थी, इसको आराम की जरूरत है जनाब।
किसकी अम्मी आई थी? मैं उस औरत को उसके करीब से भी नहीं गुजरने दूंगा। मेरे बच्चों की तरफ मत आना।
कदम बे कदम तुम्हारे बच्चों के पीछे आऊंगी ताकि अपने बच्चों को ले सकूं।
कदम बे कदम?
कदम बे कदम।
तो फिर आओ।
تو که برای من همه کسی، اگه هنوزم عاشق منی، چرا به داد من نمیرسی؟ من از تصور نبودنت روشونه یه تو گریه می کنم، منی که دل بریدم از همه، ببین برای تو چه می کنم.